بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتاگن، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، سدیو کی بھانتی کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں سے کر رہے ہیں۔ آج آپ سورہ دہر کی تیسری سے لے کر گیارہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں محمد صدیق منشاوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا،
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہم نے منوشے کو مارگ دکھا دیا ہے، اب چاہے وہ کرتگ رہے یا اکرتگ، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نشچے ہی پھلے لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی بھلی مہک کا مشرن ہوگا۔ وہ ایک سروت ہوگا جس سے اللہ کے وشیش بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ ایشور کے یہ بندے منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا دنڈ ویاپک ہوگا، اور وہ کھانے کی چاہت و آوشکتا رکھنے کے باوجود اسے محتاج، اناتھ اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تو کیول اللہ کی پرسنتا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، انیتھا نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ آبھار۔ ہمیں تو اپنے پالنہار کی اور سے ایک ایسے دن کا بھے ہے جو اتیانت کرور اور لمبا ہوگا۔ تو ایشور نے انہیں اس دن کی کڑائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی و پرسنتا پردان کی۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، شروتاؤں کارکرم میں آپ کا سواگت ہے۔ آج منگلوار ہے، نومبر کی 30، ربیع ثانی کی 24 اور آذر ماہ کی 9 تاریخ۔ کارکرم میں پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، پھر ہم آپ کو انمول باتیں سنوائیں گے۔ انمول باتوں کے بعد راجنیتک چرچا ہوگی۔ راجنیتک چرچا کے اپرانت ساپتاہک کارکرم پیش کیا جائے گا، ایران بھارت سمبندھ، اور ہماری سبھا کا انتم کارکرم ہوگا قرآنی قصے۔ تو شوتاؤ، یہ تھی ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا۔ اب کچھ ہی چھڑوں میں سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ مریم مہردادی اور قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران اور فرانس کے راشٹرپتیوں نے وینا وارتا کی سفلتا پر بل دیا ہے۔ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वियना वार्ता का मूल उद्देश्य प्रतिबंधों को हटवाना है। सीरिया का कहना है कि वो स्वतंत्र फिलिस्तीन देश के गठन का समर्थक रहा है और रहेगा। उत्तरी कोरिया ने कहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के होने वाला समझौता संसार को परमाणु युद्ध में झोंक सकता है। اور اب آپ غائم رضوی اور مریم مہردادی سے وستار سے سماچار سنیے۔
ایران اور فرانس کے راشٹرپتیوں نے وینا وارتا کی سفلتا پر بل دیا ہے۔ راشٹرپتی ابراہیم رئیسی نے اپنے فرانسیسی سمکش میکرا سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ تہران آسٹریا کی راجدھانی وینا میں جاری پرمانو وارتا کا ایک نشچت پریڑام چاہتا ہے، اور اس وارتا کا انت ایران پر لگائے گئے پرتبندھوں کو ہٹانے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سوموار کو 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی بات چیت میں دونوں نیتاؤں نے ایران ویرودھی پرتبندھوں کی سماپتی اور پارسپرک ہت کے انی مدوں پر چرچا کی۔ ایران کے راشٹرپتی کا کہنا تھا کہ پرتبندھ ایران کی پرگتی کو روکنے میں وفل رہے ہیں، اور آج پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ جے سی پی او اے کا الگھن کس نے کیا، اس لیے پرمانو سمجھوتے کا الگھن کرنے والوں کو اپنی پرتبدھتاؤں کو پورا کرنا چاہیے۔ راشٹرپتی رئیسی نے ورتمان پرستھتیوں کے لیے امریکہ اور یورپی دیشوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جنہوں نے اپنی پرتبدھتاؤں کو پورا نہیں کیا۔
ایران کے ودیش منتری نے سنیکت راشٹر سنگھ کے مہا سچیو کے ساتھ ٹیلی فون پر ہوئی بات چیت میں کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی دیشوں کی وعدہ خلافی کے باوجود تہران میں وینا پرمانو وارتا میں سدبھاونا کے ساتھ بھاگ لیا ہے۔ سوموار کی رات سنیکت راشٹر سنگھ کے مہا سچیو اینٹونیو گوٹیرس کے ساتھ بات چیت میں ایرانی ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے وینا پرمانو وارتا اور افغانستان سمیت شیتری اور انتراشٹری مدوں پر چرچا کی۔ امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ تہران کے اچھے سمجھوتے کے لیے پریاس کر رہا ہے، اور اس کے لیے دونوں پکشوں کو پرمانو سمجھوتے کے تحت اپنی پرتیبدھتاؤں کو پورا کرنا ہوگا۔ तेहरान में ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख और आईएईए के महासचिव के बीच हालिया सार्थक बातचीत का उल्लेख करते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ तकनीकी सहयोग जारी रखेगा।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान की वार्ताकार टीम प्रतिबंध हटाए जाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए वियना पहुंची है। उन्होंने कहा कि वियना में जो कुछ भी हो रहा है उसका मकसद प्रतिबंधों को हटाया जाना है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने मंगलवार को बातचीत में बताया कि वियना परमाणु वार्ता के बारे में पूछे जाने पर कहा, चरणबद्ध तरीके से वार्ता और नई प्रतिबद्धताओं जैसे मुद्दों का -1 के साथ बातचीत से कोई स्थान नहीं है। खतीबजादे का कहना था कि ईरान दृढ़ संकल्प के साथ वार्ता में शामिल हुआ है, इसलिए अगर सामने वाला पक्ष समय बर्बाद करने के बजाय सद्भावना के साथ प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास करेगा तो वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ेगी।
ईरान के विदेश उपमंत्री ने कहा कि तेहरान के विरुद्ध अमरीका के अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाए जाने के बारे में समझौता होना चाहिए। फार्स न्यूज के अनुसार ईरान के विदेश उपमंत्री और परमाणु वार्ताकार टीम के प्रमुख अली बागेरी कनी ने +1 के संयुक्त आयोग की आरंभिक बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। बागेरी कनी ने इस सवाल के जवाब की मंगलवार से आरंभ होने वाली बैठक में 5 महीने पहले वाले बिंदुओं पर चर्चा होगी या फिर नई वार्ता की जाएगी। कहा कि वो चीज जो पिछले 6 चरणों से बाकी है वो एक मसौदे के रूप में है जिस पर सहमति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि क्योंकि वार्ता में भाग लेने के लिए हमारा दृढ़ संकल्प है और किसी सहमति पर पहुंचने की संभावना पाई जाती है, इसलिए हम भविष्य को लेकर आशावादी है। इसी के साथ उन्होंने सोमवार को JCPOA के आयोग की संयुक्त बैठक के बारे में कहा कि ये तय पाया है कि प्रतिबंधों को हटाने के मुद्दे को कार्यसूची में सर्वोपरि रखा जाए।
ईरान की नौसेना के कमांडर का कहना है कि रूस और चीन ने ईरान के साथ संयुक्त नौसैनिक युद्ध अभ्यास के लिए अपनी तत्परता जताई है। रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि देश की नौसेना वार्षिक युद्ध अभ्यास करती है और हम इस साल भी अभ्यास करेंगे। रियर एडमिरल का कहना था कि सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए हमने कई देशों को आमंत्रित किया है, जिसके बाद रूस और चीन ने इसमें शामिल होने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। कमांडर ने कहा कि ईरान के सशस्त्र बलों की विभिन्न इकाइयां अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेती रही हैं।
सीरिया ने अपने दृष्टिकोण को पुनः पेश किया है कि दमिश्क स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का समर्थक रहा है और इसी नीति पर अड़िग है। सना समाचार एजेंसी के अनुसार सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिकदाद ने सोमवार को फिलिस्तीनियों से एकजुटता दिवस के अवसर पर कहा कि सीरिया बैतुल मुकद्दस की राजधानी वाले स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का हमेशा समर्थन करता रहेगा। उन्होंने कहा कि ये दिन हमेशा लोगों के दिमाग में फिलिस्तीनियों की आकांक्षाओं को जीवित रखे हुए है। सीरिया के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन के मुद्दे के सामने खड़ी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ज़ायनी शासन के अधिग्रहण को समाप्त करने के लिए विश्व समुदाय की ओर से अब तक कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि इससे अवैध ज़ायनी शासन दुस्साहसी होता जा रहा है। फैसल मिकदाद का कहना था कि फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे अत्याचारों की जिम्मेदारी अवैध ज़ायनी शासन का समर्थन करने वाले देशों पर आती है। उन्होंने राष्ट्रसंघ से इस बारे में पूरी गंभीरता के साथ काम करने का आह्वान किया।
लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ऑन का कहना है कि हिजबुल्ला आंदोलन लेबनान की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि संगठन ने आज तक देश की जनता के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। मिशेल ऑन ने अल जजीरा टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि हिजबुल्ला लेबनानी जनता से संबंधित है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला ने आज तक लेबनान के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लेबनान के राष्ट्रपति ने बताया कि हिजबुल्ला लेबनान के संविधान के प्रति कटिबद्ध रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्ला ने अब तक उन देशों के नागरिकों के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं की जो लेबनान को आतंकी बताते हैं। और उनका कहना था कि हिजबुल्ला संगठन लेबनान की एक तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। लेबनान के राष्ट्रपति से ये पूछा गया कि अगर सऊदी अरब उनसे कहे कि वे हिजबुल्ला के विरुद्ध कार्रवाई करें तो वो ऐसे में क्या करेंगे। इसके जवाब में मिशेल ऑन ने कहा कि हिजबुल्ला ने अब तक देश में कोई भी गलत काम नहीं किया है।
120 से अधिक यूरोपीय सांसदों ने सऊदी अरब की महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के पक्ष में आवाज बुलंद की है। यूरोपीय सांसदों का कहना है कि सऊदी अरब की महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल से आजाद होने के बाद भी कठिन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। 120 से अधिक यूरोपीय सांसदों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला मानवाधिकार रक्षक दिवस के अवसर पर सऊदी अरब की महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के प्रति अपने समर्थन की घोषणा की। 120 से अधिक इन यूरोपीय सांसदों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके सऊदी अरब की उन सभी महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बिना शर्त के आजाद करने की मांग की है, जिनको रियाज ने मानवाधिकार गतिविधियों के कारण बंद कर रखा है। इस पत्र में इन महिला कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की निंदा की गई है।
उत्तरी कोरिया का कहना है कि अमरीका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला समझौता विश्व को परमाणु युद्ध में झोंक सकता है। उत्तरी कोरिया के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने जो सुरक्षा समझौता किया है उससे हथियारों की खतरनाक प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाएगी जो परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है। उत्तरी कोरिया ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले समझौते की निंदा की है और इसे युद्ध भड़काने वाला भी बताया है। उत्तरी कोरिया के विदेश मंत्रालय की साइट पर मौजूद है कि ये तथाकथित शांति समझौता खतरनाक होने के साथ ही साथ एशिया पैसिफिक क्षेत्र के संतुलन को भी बिगाड़ देगा। ये समझौता परमाणु प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाला है।
राज्यसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए जाने की विपक्षी नेताओं ने कड़ी निंदा की है। मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को बिना चर्चा के रद्द किए जाने और संसद में किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं देने को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया और सरकार पर संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत 14 दलों ने सांसदों के निलंबन की निंदा की है और इसे मोदी सरकार की तानाशाही करार देते हुए इसके खिलाफ संयुक्त रणनीति तय करने की बात कही है।
ट्विटर के सह संस्थापक और सीईओ जैक डोर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद उनकी जगह पर पराग अग्रवाल को सीईओ नियुक्त किया गया है। डोर्सी ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे और पराग अग्रवाल की नियुक्ति की जानकारी साझा की। ट्विटर पर पोस्ट किए गए पत्र में उन्होंने लिखा कि करीब 16 साल तक कंपनी में सह संस्थापक, सीईओ, चेयरमैन, कार्यकारी चेयरमैन, अंतरिम सीईओ, सीईओ आदि की भूमिकाएं निभाने के बाद मैंने तय किया कि ये मेरे जाने का अब समय है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि मैं पराग को टीम को लीड करने का मौका दूं। आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट पराग अग्रवाल ने भी जैक डोर्सी और दूसरे साथियों का आभार जताया है। इसी के साथ विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
अनमोल बातें।
श्रोताओं, कार्यक्रम अनमोल बातें लेकर मैं सैयद मीसम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। पैगंबर इस्लाम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से जो वसीयतें की हैं उनमें से एक ईश्वर या भय से रोना है। रोना एक ऐसी हालत है جو انسان کے اندر اتپن ہونے والی خاص حالت کا پریلام ہے۔ زور ڈال کر رونا سمبھو نہیں ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ رونا آنترک کریا پرتکریا کا پریڑام نہیں ہے، تو اس پرکار کے رونے کا کوئی لابھ نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ کر رونا آئے کہ ایشور مہان ہے اور اس کی مہانتا کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو اس پرکار کا رونا مہتوپورن ہے اور اس سے انسان کے اندر نشٹا پیدا ہوگی اور یہ انسان کے اندر ہاردک پریورتن کا کارن ہے، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ وہ مہان و سر سمرتھ ایشور کے سامنے ہے۔ اگر یہ بھاونا اور احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو نماز اور پرارتھنا میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور یہ احساس انسان کو پریورتت کر دے گا کہ وہ مہان ایشور کے سمکش ہے، اور نماز میں دھیان کا ارتھ یہی ہے۔ حالانکہ نماز میں دھیان کا یہ ارتھ نہیں ہے کہ انسان اپنے دماغ میں نماز کے شبدوں کا انواد کرے، بلکہ وہ یہ آبھاس کرے کہ مہان ایشور کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے بات کر رہا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو انسان کے اندر نماز میں نشٹھا پیدا کرتا ہے۔ مہان ہستیوں نے سفارش کی ہے کہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ نماز میں ذہن کہیں نہ جائے۔ ہاں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے سوابھاوک روپ سے انسان کا دماغ نماز سے باہر آ جاتا ہے، اور یہ چیز انسان کے بس میں نہیں ہے۔ حالانکہ جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا دماغ نماز سے بھٹک کر کہیں اور چلا گیا ہے، تو اسے واپس نماز میں لانا چاہیے۔ بہرحال، اگر نماز میں انسان کو اس بات کا آبھاس ہو جائے کہ وہ مہان ایشور کے سمکش کھڑا ہے اور اس سے بات کر رہا ہے، تو نماز میں اس کے اندر رونے کی حالت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
راجنیتک چرچا کے ساتھ میں اختر رضوی آپ کی سیوا میں اپستھت ہوں، میرا سلام سویکار کیجیے۔ ہماری چرچا کے وشے ہیں وینا میں پرمانو وارتا،
نمائندگان کشورهای اروپائی ہم
فلسطینیوں کے ساتھ ایک جٹتا کے انتراشٹری دیوس پر فلسطینی شرارتیوں کا پردرشن، اور راجیہ سبھا کے 12 سدسیوں کے نلمبن کا معاملہ
پچھلے صدر میں جو ہوا۔
تو سب سے پہلے وینا میں چل رہی پرمانو وارتا کا وشے۔ وینا میں ہو رہی پرمانو وارتا میں ایران کے ورشٹھ وارتاکار علی باقری کنی نے کہا ہے کہ پرمانو وارتا سارتھک ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چین اور روس نے ایران کے اسٹینڈ کا سمرتھن کیا ہے۔ وینا سے آئی آر آئی بی کے لیے کاظمی کی رپورٹ، ساتھی احمد عباس کی زبانی۔
وینا میں ہو رہی پرمانو وارتا میں ایران کے ورشٹھ وارتاکار علی باقری نے پرمانو وارتا کو سارتھک بتایا اور کہا کہ روس اور چین نے ایران کے اسٹینڈ کا سمرتھن کیا۔
نمائندگان کشورهای اروپائی ہم،
علی باقری نے کہا کہ یورپی دیشوں کے پرتنیدھیوں نے بھی اپنا پکش رکھتے ہوئے یہ بات صاف شبدوں میں کہی کہ ورتمان حالات کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے، اس لیے اب قدم اٹھانے کی شروعات بھی امریکہ کی طرف سے ہی ہونی چاہیے۔ ईरान के विदेश उपमंत्री अली बाकरी कनी ने कहा कि वियना में हमारी वार्ता 4+1 से हो रही है। उन्होंने कहा कि हम वार्ता का संजीदा इरादा और समझौते का पुख्ता संकल्प रखते हैं, इसलिए भविष्य को लेकर हम आशावादी हैं, लेकिन दूसरे पक्ष पर चूंकि हमें भरोसा नहीं है इसलिए हम भोलापन भी दिखाने वाले नहीं है, यानी किसी धोखे में आने वाले हरगिज नहीं है।
از جمله موضوع ارائه تضمین از سوی کشور آمریکا برای
علی باقری نے کہا کہ ایک مدعا یہ ہے کہ امریکہ ٹھوس گارنٹی دے کہ کوئی نیا پرتیبندھ نہیں لگائے گا اور جو پابندیاں ہٹ چکی ہیں انہیں دوبارہ نہیں لگائے گا، پرمانو سمجھوتے سے دوبارہ نہ نکلنے کی گارنٹی دے، اسی طرح گارنٹی دے کہ پرمانو ڈیل میں شامل انیہ دیشوں کے خلاف کوئی دنڈاتمک کارواہی نہیں کرے گا۔ यूरोपीय संघ के विदेश नीति के अधिकारी ने वर्किंग ग्रुप की बैठक के बाद कहा कि मंगलवार से प्रतिबंधों के मामलों की वर्किंग कमेटी और उसके बाद परमाणु मामलों की वर्किंग कमेटी अपना काम शुरू कर देगी। ईरान की वार्ताकार टीम ने कहा है कि ईरान की प्राथमिकता पाबंदियों को हटवाना है जो अमरीका की ओर से इस्लामी गणतंत्र ईरान पर लगाई गई है। एटमी डील के कमीशन की बैठक में ये फैसला किया जाएगा कि अगली बैठक कब और कहां होगी और इसमें किस तरह वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा। वियना से IRIB के लिए काजिमी की रिपोर्ट।
और अब चलते हैं लेबनान। फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर लेबनान में मौजूद फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने अवैध अधिकृत इलाकों में फिलिस्तीनी कैदियों की खराब स्थिति पर दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की और इसराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए। लेबनान से IRIB के लिए हसन अजीम जादे की रिपोर्ट, साथी सैयद मीसम की जबानी।
उत्तरी लेबनान स्थित बद्दावी और नहरुल बारिद शरणार्थी कैंपों में रहने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने विशाल प्रदर्शन किया है। फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने अवैध अधिकृत इलाकों में फिलिस्तीनी कैदियों की खराब हालत पर विश्व समुदाय से गंभीर प्रतिक्रिया दिखाने की मांग की। अवैध ज़ायोनी शासन की उम्र समाप्त हो रही है, हमारे कैदियों का प्रतिरोध उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, लेकिन मानवाधिकारों का दावा करने वालों के लिए ये एक नहीं मिटने वाला कलंक है। बेरूत में भी फिलिस्तीनी और लेबनानी प्रतिरोधी संगठनों के प्रतिनिधियों ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की घर वापसी के अधिकार पर बल दिया। बैतुल मुकद्दस और फिलिस्तीनी लोगों के मुद्दे का सिर्फ एक ही समाधान है, जैसा कि ईरान बल देता रहा है, सभी शरणार्थियों की वतन वापसी और अपना भविष्य निर्धारित करने का अधिकार। असली संघर्ष कुछ क्षेत्रीय शासकों द्वारा इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के समर्थन में है। आखिरकार ज़ायोनी शासन फिलिस्तीनियों के संकल्प और प्रतिरोध के आगे झुक जाएगा। प्रतिरोधी संगठनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के नाम पत्र लिखकर अवैध बस्तियों के निर्माण और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में ज़ायोनियों के अपराधों की निंदा की। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने बल दिया कि इसराइल के साथ कुछ क्षेत्रीय देशों द्वारा संबंधों को सामान्य बनाने की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा और इसराइल इस प्रकार अपना अवैध वजूद नहीं बचा सकेगा। हसन अजीम जादे, IRIB, बेरूत।
और अब चलते हैं भारत।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत के ऊपरी सदन राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिन 12 सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद शामिल हैं। सभी सांसदों को पिछले मानसून सत्र में अशोभनीय आचरण करने की वजह से निलंबित किया गया। निलंबन के फैसले के खिलाफ बुधवार से निलंबित सांसद धरने पर बैठेंगे। विस्तृत रिपोर्ट के साथ नई दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन 12 सांसदों के निलंबन पर लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ और विपक्ष ने बिना शर्त निलंबन वापस लेने की मांग की। कांग्रेस, डीएमके और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा की कार्यवाही से वॉकआउट किया। सांसदों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार का डराने का नया तरीका है।
पिछले सदन में जो हुआ, आज की तारीख में जब नए सत्र शुरू हुए हैं, इस समय क्या पिछले सदन की अगर कोई भी शिकायत रहे, कोई भी गैर कानूनी काम रहे, कोई भी रूल के मुताबिक नहीं काम हुए, तो उसके लिए क्या सजा इस सदन में किसी को भुगतने को देखे हैं हम लोग? लेकिन यहाँ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चल रहे हैं। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये आज की सरकार की ये एक नया तरीका है हम सबको डराने की, धमकाने की और हमारी बात रखने का जो अवसर मिलते हैं उसको छीनने की, ये एक नया तरीका अपनाते हैं आज की सरकार।
सरकार की ओर से ऐसा संकेत दिया गया कि यदि ये सांसद माफी मांग लें तो इनका निलंबन समाप्त हो सकता है, लेकिन विपक्षी सांसदों ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना सहित दूसरे दलों के 12 सांसदों को पिछले सत्र में हंगामा करने और अशोभनीय आचरण के कारण पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा के सांसदों के निलंबन की कार्रवाई गलत तरीके से की गई है और माफी का सवाल ही नहीं उठता। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने निलंबन के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि यही आखिरी विकल्प था। उन्होंने कहा कि ये फैसला सदन का था, सभापति का नहीं। नायडू ने निलंबन को निरस्त करने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट राज्यसभा के सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और निलंबन वापस लिए जाने की मांग की। ज्ञात रहे कि शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। विपक्ष ने दोनों सदनों में इस पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार और विपक्षी दल दोनों ही इन कानूनों की वापसी चाहते हैं, इसलिए इस विधेयक पर चर्चा की जरूरत नहीं है। विपक्ष ने बिना चर्चा के इस विधेयक को पास कराए जाने का विरोध करते हुए कहा कि सदन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कल विपक्षी दलों के सांसदों ने इस विधेयक पर चर्चा की जब मांग की थी, तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि सदन में व्यवस्था नहीं है और ऐसी स्थिति में चर्चा संभव नहीं है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारी आज की सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम कुरानी किस्से, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम ईरान भारत संबंध।
ईरान भारत संबंध।
दोस्तों, ईरान भारत संबंधों पर एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और कायम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान की आर्थिक प्राथमिकताओं में से एक भारत जैसे पड़ोसी देशों की संभावनाओं का प्रयोग करते हुए उसके साथ दीर्घकालीन संबंधों को विकसित करना है। ईरान के एक अन्य पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ तेहरान की सांस्कृतिक समानताएं और वहां की विशेष आर्थिक स्थिति के कारण काबुल को तेहरान की आर्थिक डिप्लोमेसी में विशेष स्थान प्राप्त रहा है। वर्तमान समय में ईरान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। इसी के साथ अफगानिस्तान भी ईरान की चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ईरान के अतिरिक्त भारत के साथ भी व्यापारिक आदान प्रदान को बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ है। ईरान पर अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों को पुनः बढ़ाए जाने के बावजूद ईरान और अफगानिस्तान के बीच आयात तथा निर्यात की प्रक्रिया रुकने नहीं पाई।
काफी लंबे समय से अफगानिस्तान अमेरिका, रूस, पाकिस्तान और भारत के बीच राजनीतिक एवं भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता का शिकार रहा है। ईरान की चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को ओमान सागर तथा हिंद महासागर से जोड़ने से क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में तेहरान और काबुल की भूमिका अधिक मजबूत होगी। चाबहार बंदरगाह को ईरान के पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट मार्ग के रूप में जाना जाता है।
दोस्तों, भारत ने चाबहार में पूंजी निवेश कर रखा है। अफगानियों के लिए इस बंदरगाह का स्ट्रेटेजिक महत्व है। इसका कारण यह है कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती। अपने विकास के लिए उसे निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र जल तक पहुंच की जरूरत है। इस काम में चाबहार उसके लिए सहायक सिद्ध होगा।
ईरान और अफगानिस्तान की संयुक्त सीमाओं पर वस्तुओं की स्वतंत्र बिक्री से वहां पर खाद्य पदार्थों के बाजार में रौनक हुई है। अफगानिस्तान की कंपनियां वस्तुओं को ईरान के पूर्वी बाजार से कम कीमत पर खरीदने में सक्षम नहीं हैं। ये स्थिति अफगानिस्तान के लिए ईरान के निर्यात के बढ़ने का कारण बनी है।
अफगानिस्तान के लिए जलमार्ग तक पहुँच ईरान और पाकिस्तान के मध्य से ही संभव है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान पाकिस्तान से मिलने वाली अफगानिस्तान की संयुक्त सीमा का बार बार बंद हो जाने के कारण अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। चाबहार बंदरगाह पर गतिविधियां आरंभ हो जाने से ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच संबंध अधिक मजबूत हुए हैं।
ईरान के पूंजी निवेश से विकसित होने वाली इस बंदरगाह ने विगत की तुलना में अफगानिस्तान के व्यापारियों के लिए बेहतरीन परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। वे लोग अब चाबहार के माध्यम से अफगानियों की बहुत सी जरूरत की चीज़ों का आयात कर सकते हैं। कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों के बावजूद चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ईरान और अफगानिस्तान का वार्षिक व्यापार लगभग $3 अरब तक पहुँच गया। चाबहार बंदरगाह का विस्तार ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार को बढ़ाने के साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को विगत की तुलना में अधिक विस्तृत करेगा।
चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन का काम पूरा होने और उसके बाद जाहेदान सरक्स रेलवे लाइन बिछाने से चाबहार व्यावहारिक रूप से भारत, अफगानिस्तान, मध्य एशिया तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ ही कफकाज को आपस में जोड़ने के केंद्र के रूप में बदल जाएगा। चाबहार पर गतिविधियां आरंभ होने से उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन शुरू हो गया और ये दक्षिणी एशिया को मध्य एशिया के देशों से जोड़ता है।
अफगानिस्तान के आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार आयात और निर्यात के लिए कराची बंदरगाह की तुलना में चाबहार बंदरगाह हमारे लिए अधिक उपयुक्त और कम खर्चीली है। کراچی بندرگاہ کی تلنا میں چابہار بندرگاہ افغانستان کے کیندر سے لگ بھگ 700 کلومیٹر نکٹ ہے اور اس پر تلناتمک روپ میں خرچ بھی کم آتا ہے۔ سن 2018 میں بھارت نے اپنے ممبئی بندرگاہ کے مادھیم سے افغانستان کو گیہوں اپہار سوروپ بھیجا تھا جو چابہار بندرگاہ پر پہنچا۔ اس کے بعد اس کو افغانستان بھیج دیا گیا۔ بھارت کے ساتھ ویاپار کرنے میں افغانستان کے ویاپاریوں کو پریرت کرنے کے ادیشے سے نئی دلی نے ابھوتپورن چھوٹ کے اعلان کے ساتھ ہی بہت سی سویدھائیں بھی اپلبدھ کرائی ہیں۔
بھارت افغانستان اور ایران میں پائی جانے والی بے حساب سمبھاوناؤں اور ان تینوں دیشوں میں وکاس میں چابہار بندرگاہ کی بھومیکا کی اور سنکیت کرتے ہوئے ایران میں افغانستان کے دوتاواس میں واڑجک پرامرش داتا عبدالحادی فرہنگ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی ارتھ ویوستھا کے لیے چابہار بندرگاہ آکسیجن کی طرح ہے۔ ایران، بھارت اور افغانستان کے بیچ بیٹھک کے آیوجن کا ادیش شیتریہ سہکاریتا کے لیے سمبھاوناؤں کی سمیکشا کرنا ہے۔
دوستو، سن 2018 میں افغانستان کی راجدھانی کابل میں ایران، بھارت اور افغانستان کے ودیش اپ منتریوں کی سنیکت بیٹھک میں ایران کے ودیش اپ منتری عباس عراقچی نے تینوں دیشوں کے بیچ ویاپارک آدان پردان کے مارگ میں آنے والے رکاوٹوں کو پہلے دور کرنے پر بل دیا تھا۔ انہوں نے چابہار کو لے کر تینوں دیشوں کے بیچ ہونے والے سہیوگ کو ان دیشوں کی سہکاریتا کا پرتیک بتایا۔ اس بیٹھک میں بھارت کے ودیش اپ منتری نے کہا تھا کہ افغانستان کی آرتھک ایوم سرکشا استھتی کو سدھارنے کے لیے بھارت کابل کے ساتھ سہیوگ جاری رکھے گا۔
چابہار بندرگاہ کی شہید بہشتی اکائی کے ادگھاٹن کے ساتھ ہی اس اسٹریٹجک بندرگاہ کے مادھیم سے بھارت کی اور سے افغانستان کے لیے وستوؤں کا بھیجا جانا آرمبھ ہو گیا۔ سن 2020 سے بھارت سرکار کے اترکت وہاں کے پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اپنے اتپادوں کو چابہار کے مادھیم سے افغانستان بھیجنا آرمبھ کر دیا۔ واستو میں ایران نے چابہار کے مادھیم سے جو سویدھا اپلبدھ کروائی ہے اس سے یہ پہلی بار ہے کہ جب بھارت کی سرکار کے اترکت وہاں کا پرائیویٹ سیکٹر بھی اس سے لابھانوت ہو رہا ہے۔ اس پرکار کے بھارت اور افغانستان ایک نئے ویاپارک چرن میں پرویشت ہو گئے ہیں۔
ایران کی چابہار بندرگاہ کی بھومیکا کے مضبوط ہونے تتھا ایران اور بھارت کے سمبندوں میں افغانستان کی سمبھاوناؤں کے نہ کیول یہ کہ اس کے کیول کچھ سکاراتمک نتیجے سامنے آئے ہیں بلکہ اس سہیوگ نے کھیتر میں شانتی ایوم استھرتا کو بھی مضبوط بنایا ہے۔ کھیتر میں ہر پرکار کے اتیواد اور آتنکواد سے مقابلے میں یہ سہیوگ لابھدائک سدھ ہوگا۔
اس پرکار یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتر دکشن کوریڈور اور چابہار بندرگاہ کی وشیشتاؤں کے کارن ایران نہ کیول یہ کہ بھارت اور افغانستان کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو وستت کر رہا ہے بلکہ روس، چین، پاکستان اور کیندری ایشین دیشوں کے ساتھ بھی سہیوگ میں وستار کر رہا ہے۔ تو دوستوں، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। कुरान किस्से।
दोस्तों, कार्यक्रम कुरानी किस्से की कन्नी कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम सूरह अनफाल की आयत संख्या 32 और 33 के बारे में बात करेंगे। स्वाति और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
दोस्तों, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में कई अवसरों पर हजरत अली, हजरत फातिमा और उनके दोनों बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के महत्व पर प्रकाश डाला। इसी के साथ वे इन लोगों की इज्जत किए जाने के बारे में भी कहा करते थे।
एक दिन उन्होंने कहा कि यह सच है कि ईश्वर के निकट मेरे भाई अली इब्ने अबी तालिब का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि अली का महत्व ईश्वर के निकट इतना अधिक है कि अगर कोई भी पूरे विश्वास के साथ उनकी फजीलत का उल्लेख करे तो ईश्वर उसके पहले के और बाद वाले पापों को माफ कर देगा। अगर कोई हजरत अली की किसी एक फजीलत को लिखे तो जब तक वह लिखी हुई बात बाकी रहेगी तब तक फरिश्ते उसके लिए प्रायश्चित करते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति हजरत अली अलैहिस्सलाम की फजीलत को अपने कानों से सुने तो ईश्वर उसके उन पापों को माफ कर देगा जो उसने कानों से अंजाम दिए होंगे। अगर कोई हजरत अली की फजीलत को अपनी आंखों से पढ़े तो ईश्वर उसके वे सारे ही गुनाह माफ कर देगा जो उसने अपनी आंखों से किए होंगे। इसके बाद पैगम्बर इस्लाम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की ओर मुख करते हुए कहा कि हे अली, आप सूरह तौहीद की तरह हैं। जो भी आपको दिल से चाहता है मानो उसने एक तिहाई कुरान खत्म किया। जो लोग आपको चाहते हैं और आपके चाहने वालों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं तो वे ऐसे हैं जैसे उन्होंने दो तिहाई कुरान खत्म किया हो। जो भी आपको दिल से चाहता हो और जबान से आपकी सहायता करता हो और आपकी सहायता के लिए आगे आए तो मानो उसने पूरा कुरान पढ़ लिया।
मदीना वालों ने कई बार देखा था कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन और हुसैन को अपने कांधों पर बैठाकर घुमाने के लिए ले जाया करते थे। वे अपने सीधे कांधे पर इमाम हसन को और बाएं कांधे पर इमाम हुसैन को बिठाते थे। एक बार अबू बकर ने पैगंबर इस्लाम की इस स्थिति को देखा। उन्होंने कहा कि हे ईश्वर के दूत, इन दोनों बच्चों को एक साथ कंधे पर बिठा कर ले जाना आपके लिए कठिन है, इसलिए एक को मुझे दे दीजिए। उनकी बात सुनकर पैगंबर इस्लाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे जिस सवारी पर हैं वो सवारी भी बहुत अच्छी है और सवारी पर जो लोग सवार हैं वे भी बहुत अच्छे सवार हैं, हालांकि इनका बाप इनसे अधिक श्रेष्ठ है।
यह कहने के बाद पैगंबर इस्लाम ने कहा कि हे लोगों, क्या मैं तुमको उन दो के बारे में बताऊं जिनके नाना और नानी सब लोगों से बेहतर हैं? लोगों ने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह। इस पर आपने फरमाया कि हसन और हुसैन के नाना ईश्वर के अंतिम दूत हैं और उनकी नानी खदीजा स्वर्ग की महिलाओं की प्रमुख है। फिर आपने कहा कि क्या मैं बताऊं कि उनके माता और पिता कौन हैं? लोगों ने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह। आपने कहा कि उनके पिता अली इब्ने अबी तालिब हैं जबकि उनकी माता फातिमा जहरा हैं जो अंतिम ईश्वरीय दूत की सुपुत्री हैं। इसके बाद आपने कहा कि क्या मैं बताऊं कि उनके चाचा और फूफी कौन हैं? लोगों ने कहा कि बताइए कि वे कौन हैं। आपने कहा कि उनके चाचा जाफर इब्ने अबी तालिब हैं और उनकी फूफी अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी हैं। अंत में आपने पूछा कि मुसलमानों, क्या तुम जानते हो कि हसन और हुसैन के मामा और खाला कौन हैं? जब लोगों ने कहा हाँ, तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि हसन और हुसैन के मामा कासिम और उनके खाला जैनब हैं। इसके बाद उन्होंने दुआ के लिए हाथ बढ़ाए और कहा कि हे ईश्वर, तू जानता है कि हसन और हुसैन जन्नती हैं। उनके माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, चाचा, मामा, खाला और फूफी सब ही जन्नत में हैं। तो जो भी उन दोनों का अनुसरण करता है वह भी स्वर्ग में होगा।
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد نظر بن الحرس بہت کرودھت ہوا اور آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ بہت تیزی سے پیغمبر اسلام کے نکٹ پہنچا۔ اس نے پیغمبر اسلام کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ہے محمد، آپ آدم کی سنتان کے مکھیا ہیں، علی عرب کے سردار ہیں، آپ کی سپتری جنت کی مہیلاؤں کی سردار ہے، ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب ایسا ہی ہے تو پھر قریش اور عرب کے لیے تو کوئی استھان ہی نہیں بچا۔ پیغمبر اسلام نے نظر بن الحرس کی اور غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ ایشور کی سوگند، جن پدوں اور استھانوں کی بات تم نے کی ان میں سے ایک بھی میں نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ پد، استھان یا اپادھی ایشور نے انہیں ان کے مہتو کے کارن دی ہے، اس میں میری کوئی بھومکا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی ان باتوں کو سن کر نظر بن الحرس ادھک غصے میں آ گیا۔ اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا کہ ہے ایشور، اگر یہ استھان اور مہتو تیری اور سے ہے تو پھر آسمان سے میرے سر پر ایک پتھر آ کر گرے اور مجھ کو دردناک دنڈ کا سامنا کرنا پڑے۔
نظر بن الحرس کی باتیں سن کر پیغمبر اسلام بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ اس پر الحرس نے کہا کہ شاید آپ صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن میرے لیے یہ سننا بہت ہی کٹھن ہے۔ یہی کارن ہے کہ میں اس نگر سے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام نے اس کو اور ادھک سمجھایا۔ آپ نے کہا کہ نظر بن الحرس، تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور پاپوں کے مقابلے میں دھیرے سے کام لو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پرکار کی وشیشتائیں ایشور تمہارے لیے وشیش کر دیں۔ اس آدھار پر ایشور کے آدیشوں کو راضی خوشی مانو، کیونکہ ایشور کبھی کبھی اپنے بندوں کی پریکشا لیتا ہے، حالانکہ ایشور بہت ہی مہربان اور کرپالو ہیں۔
نظر بن حرس اب بھی اپنی باتوں پر ڈٹا ہوا تھا۔ وہ مدینے سے جانا چاہتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جانے کی انمتی دے دی۔ وہ اب مدینہ سے جانے کی تیاری میں لگ گیا اور اپنا بوریا بستر سمیٹنے لگا۔ وہ لگاتار یہی کہتا جا رہا تھا کہ ہے ایشور، محمد نے اپنے پریوار والوں کے لیے جو باتیں بتائی ہیں، اگر وہ واسطوں میں صحیح ہیں تو پھر آسمان سے میرے سر پر پتھر آ کر گرے۔ اسی دوران سورہ انفال کی 32 اور 33 آیتیں نازل ہوئیں، جن کا انواد اس پرکار ہے۔ اور ہے پیغمبر، یاد کیجئے اس سمے کو جب انہوں نے کہا کہ پربھور، یدی محمد کی کہی ہوئی باتیں ستیہ ہیں اور تیری اور سے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمارے لیے پیڑا دائک دنڈ بھیج دے۔ ہے پیغمبر، جب تک آپ لوگوں کے بیچ ہیں ایشور انہیں دنڈت نہیں کرے گا، اور جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے ایشور انہیں دنڈ دینے والا نہیں ہے۔
ان آیتوں کے سندر میں پوتر قرآن کے جانے مانے ویاخیاکار علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس عذاب کی بات کہی گئی ہے وہ پیغمبر اسلام کے پوتر استتو کے کارن اب نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک انی مسلمانوں کی اور سے ایشور پرائشت کا سلسلہ چلتا رہے گا اس سمے تک ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ زمین پر عذاب نہ آنے کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی 88ویں حکمت میں کہتے ہیں کہ دھرتی پر ایشور کے عذاب کو روکنے والی دو چیزیں تھیں، جن میں سے ایک اٹھا لی گئی مگر دوسری اب بھی باقی ہے، تو ایسے میں دوسری انوکمپا کو پکڑے رہو۔ وہ انوکمپا جو اٹھا لی گئی وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کا پوتر استتو تھا، جبکہ جو ایشوری انوکمپا ابھی بھی موجود ہے وہ ہے ایشور سے پرائشت۔
ایشور کہتا ہے کہ ایشور اس سمے تک ان پر عذاب نہیں بھیجے گا جب تک پیغمبر کا استتو موجود ہے، اور جب تک لوگ پرائشت کرتے رہیں گے تب تک ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ پیغمبر اور ان کے پریجنوں کے کتھنوں میں بھی اس بات پر بل دیا گیا ہے کہ پوتر و بھلے لوگوں کے استتو کے کارن ایشور لوگوں کو سارجنک ڈھنگ سے دنڈت نہیں کرتا۔ ایشور کے پری بندوں کا استتو دنڈ کو روکنے کا کارن ہے۔ ان کے استتو کا سمان کرنا چاہیے اور ان کے مولی کو سمجھنا چاہیے۔ توبہ و پرائشت نہ کیول پرلے کے دنڈ کو روکتا ہے بلکہ سنسار کے دنڈ کو بھی روکتا ہے، اتہ ہمیں اس کی اور سے نشچیت نہیں رہنا چاہیے۔
دوستوں، کبھی کبھی ہٹ دھرمی، دویش اور ایرشیا منشی کو اس سیما تک لے جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی انت کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بات الیکھنی ہے کہ سورہ قلم کی آیت سنکھیا 8، سورہ حج کی آیت سنکھیا 3 اور 4 تتھا سورہ فرقان کی 5ویں اور 6ویں آیتوں کے نازل ہونے کے سندرب میں بھی نظر بن حرس کے نام کا الیکھ ہوا ہے۔
تو دوستو، اسی کے ساتھ یہ کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں انمتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، ہمارا پریاس آپ کو کیسا لگا اس بارے میں آپ اپنے وچار ہمیں لکھ بھیجیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ ہے partstoday.com/hi۔ تو اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کی یہ سبھا اب یہیں پر سماپت ہوتی ہے۔ آپ سبھی سے اب ہم انومتی چاہتے ہیں۔ شبھ راتری، خدا حافظ۔ Oh,